नमः भगवते वासुदेवाय न एतदखिलाय उपदेशेन न विनीताय कहिर्चित् न स्तब्धाय न विहरणाय न एव धर्मध्वजाय च। भगवान कपिल ने कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु है, अवनित है या दुराचारी है, ना ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, न ललुपाय उपदेशेन न गृहारूढ़ चेतसे न अभक्ताय च मे जातु न मद भक्त दिशाम अपि। यह उपदेश न तो उन लोग को दिया जाए जो अत्यंत लालची है और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, न ही अभक्त और भक्त एवं भगवान के भक्त तथा तो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तात्पर्य, जो लोग सदैव अन्य जीवों को हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाते रखते हैं, वे कृष्ण भावना मूर्त को समझने का अधिकार नहीं है और वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रक्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो सकते। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथाकथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत देखावटी रूप से किसी और अंश से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावना मूर्त अथवा भक्ति योग क्या है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को भगवान तक पहुंचने का एक सा पद नहीं समझते हैं, वे भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। हमारा अनुभव है कि कुछ अध्येता हमारे पास तो आते हैं किंतु किसी विशेष प्रकार के मताग्रह होने का कारण वे हमारा साथ छोड़कर वीरान में खो जाते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, यह तो परमेश्वर तथा उनके साथ उनके संबंध को जानने के शिक्षण विधि है। कोई भी इस आंदोलन में बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हो सकता है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी है जो अन्य प्रकार से अनुभव करते हैं। अतः यह श्रेयस्कर होगा कि ऐसे लोग को कृष्ण भक्ति के ज्ञान का उपदेश न दिया जाए। सामान्यतः भौतिकवादी व्यक्ति किसी नाम जस तथा लाभ के पीछे लगे रहते हैं, अतः यदि कोई इन कारणों से कृष्ण भक्ति ग्रहण करता है तो वह इस दर्शन को कभी नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। विशेषतः कलयुग में वे किसी सांस्कृतिक संस्थान में केवल नाम कमाने के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची न भी हो किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वो भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। ऊपर से ऐसे लोग भी भले ही लालची न लगे हैं किंतु अपने पत्नी बच्चों तथा परिवार की उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उपयुक्त दोषों से कलमश ग्रस्त न हो तो भी यदि वह भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता या अभक्त है तो वह कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकता। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथानीतं तं सजीवं साधयितं नवदूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादन सगणा ललिता श्री विशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकाल भागवत कक्षा में आप लोग को श्री श्री कृष्ण बलरंग का मंदिर का ओर से स्वागत करते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, लेकिन उसी दिन का ऊपर तो ऐसा कुछ शास्त्र में वर्णन इतना नहीं मिलता है, लेकिन प्रभुपाद भी बहुत सारी जगह में कोई जगह में ऐसा मेंशन नहीं किए। आज कौन सा दिन है? पूर्णिमा का नाम है पौष्य पूर्णिमा। लेकिन पौष्य जब आ जाता है और संसार का लोग उसको पुष्प अभिषेक का नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं पुष्प अभिषेक ठाकुर जी का होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि इसी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी फूल नहीं देशी फूल समझते हैं ना। हर घर का सामने, आप उड़ीसा में आप चले जाएंगे, हर घर का सामने गेंदा फूल आपको दिखाई देगा, हर घर का सामने। और ये फूल जगन्नाथ का पास जाता है, और गांव का पास से जिस भी मंदिर होगा उसी मंदिर को लोग देते हैं। लेकिन ये जो पुष्पा पौष्य पूर्णिमा है, इसका ऊपर जगन्नाथ का क्या लीला होता है आज का दिन में, 12 महीना में 13 पर्व होता है वहां पे। महीना तो 12 है, हर महीना में एक ही की पर्व होना चाहिए, लेकिन एक पर्व एक्स्ट्रा होता है। लेकिन आज का जो दिन है पौष पूर्णिमा, आज का दिन में विशेष प्रोग्राम होता है। क्या प्रोग्राम होता है वहां पे? दो बार ठाकुर जी स्नान करते हैं। जगन्नाथ स्नान एक दिन होता है, कब होता है? 108 तीर्थ जल में स्नान किया जाता है, वो है स्नान पूर्णिमा। उसी दिन से भगवान भूकार में पड़ते हैं और 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं। उसका बाद रथ यात्रा निकलता है। गुंचा मार्जना का दिन में दर्शन देते हैं, उसका दूसरा दिन होता है रथ यात्रा। एक बार वो स्नान होता है, ठाकुर जी डायरेक्ट स्नान करते हैं सारा तीर्थ का जल में। लेकिन आज का दिन में वही 108 तीर्थ का जल में स्नान करते हैं, लेकिन भगवान डायरेक्ट स्नान नहीं करते हैं। जो अर्चा विग्रह होते हैं और उनका सामने जगन्नाथ का सामने एक मिरर रखा जाता है, उनका जो प्रतिबिंब को देखते हुए अभिषेक किया जाता है। और आज का दिन में पुरी में जगन्नाथ को शाम को 6 बजे जगन्नाथ को राम का स्वरूप दिया जाएगा, रामचंद्र का वेश बन जाएगा जब को। और जगन्नाथ का जो हेड पुजारी है, मेन पुजारी है, वो लक्ष्मण बन कर आएंगे, छत्री धर के छत्री पकड़ कर आएंगे, और जगन्नाथ का दाएं तरफ खड़ा रहेंगे छत्री पकड़ के। ये दर्शन होता है शाम को 6 बजे। सुबह का प्रोग्राम हो चुका है ऑलरेडी, सुबह का जो 6:30 बजे कार्यक्रम हो चुका है, और शाम को 6 बजे ये दर्शन होगा। क्योंकि ये भी कोई भी शास्त्र में वर्णन है कि नहीं, एक पुरी का एक जो मेन पुजारी है उनसे मैं बात किया था, उन्होंने मेरा को बताया है आज का दिन में स्वयं राम राज्य अभिषेक हुए थे, इसीलिए जगन्नाथ को रामचंद्र का वेश बना जाता है। और आज का दिन में पुष्पाभिषेक भी किया जाता है। इसलिए हर मंदिर में हमारा इस्कन में पुष्पाभिषेक होता है। पौष पूर्णिमा का बारे में इतना ही, लेकिन आज का जो श्लोक है थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए। इसी श्लोक में कितना बार नकारात्मक न आया है कौन बोला बोल सकता है? इसी श्लोक में ठीक से बोलिए, पांच कौन बोला है? हाथ उठाए कौन पांच बोला है? पांच बार आया है। ध्यान से देखिए, एक ही आया है न एतत्, फिर आया है कहां पे न अभिनिताय, न स्तब्धाय, न भिरनाय, न एव धर्म ध्वजाय। अच्छा कितना बार हुआ? पांच बार ये श्लोक में न आया है। शास्त्र में वर्णन किया गया है न जहां पे आ जाता है, मतलब इसका अर्थ क्या समझते हैं? नहीं नहीं है ना, नहीं बोलना है, नहीं करना है, न आ जाता है नकारात्मक शब्द से। दूसरा श्लोक में इसी प्रकार चार बार न आया है। कहने का अर्थ है मैं जैसे जैसे इसमें चार पॉइंट का ऊपर आलोचना करूंगा। चार पॉइंट बहुत हर भक्त को समझना चाहिए और हर भक्तों को प्रचार के लिए बहुत सहायक है। चार पॉइंट एक ही है। पहले पॉइंट है प्रभुपाद बोलते हैं यह उपदेश, कौन सा उपदेश नहीं देना है, कौन सा उपदेश कृष्ण भक्ति को जो नहीं समझ पाएगा वो व्यक्ति को नहीं शिक्षा देना है। इसलिए कौन सा व्यक्ति है, ये चार प्रकार के व्यक्ति इसमें आ जाते हैं। पहले नाम बताया ईर्ष्यालु या दुराचारी, दूसरा है दंभीय और गर्व करने वाले, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जो लालची है, लालची मतलब क्या है, जो लालसा रखते हैं, लालसा रखते हैं मतलब किसके प्रति, गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त। और फोर्थ पॉइंट क्या है, भगवान और भगवान का भक्त के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। ये चार पॉइंट। पहले पॉइंट कौन सा पॉइंट में पहले चर्चा करेंगे बोलिए, क्योंकि समय का ऊपर मैं डिपेंड करता हूं, क्योंकि समय को देख कर बोलूंगा। बहुत सी इसमें है समझने के लिए, बहुत हर शास्त्र में वर्णन किया गया है। आप जो बताएंगे मैं उसी प्रकार के आपको चर्चा करूंगा। कौन सा पॉइंट आप सुनना चाहते हैं? चार पॉइंट तो बता दिया, भगवान और भक्त के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तब भगवद गीता में एक श्लोक आता है, कौन सा श्लोक? सात है, श्लोक नंबर 27। इच्छा देश समुथेन द्वंद्व महिना भारत सर्वभूतानि समह सर्ग जानति परम तपः। ईर्ष्या करना मतलब क्या है, इसका दूसरा अर्थ में आप देखा जाए दोष देखना, उसका दोष देखना है। और दूसरा अर्थ में शास्त्रगत अर्थ में देखा जाए उसका प्रति दया नहीं करना, उसका प्रति प्रीति नहीं रखना, उसका प्रति प्रेम नहीं रखना, इसका उल्टा आएंगे तब ईर्ष्या। जिसको हमें नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझा पा रहा है, जिसके प्रति हमारा दया नहीं हो रहा है, दया को अपोजिट लेंगे वो हो गया ईर्ष्या। अभी इसी शास्त्रगत अनुसार देखा जाएगा, जिसी प्रकार भक्त और भगवान के प्रति कैसा ईर्ष्या करते हैं, हर शास्त्र में प्रमाण है। भागवत खोल के देखिए, भक्त और भगवान के प्रति ईर्ष्या कौन किया था, सामने में प्रकट हो जाता है, शास्त्रगत अनुसार सामने में प्रकट हो जाता है। जो भक्त डीपली कोई शास्त्र को अध्ययन करेगा पूरा, यहां पे जैसे मैं बताया कोई ये भागवत पढ़ेगा, यहां पे लिखा है ये उपदेश उन लोग के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु है, अवनित है और दुराचारी है, न ही ये उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा के गर्व करते हैं। जब तक ये नौ शब्द उसको मालूम नहीं पड़ेगा, हम बोलेगा हाँ ये उपदेश देना चाहिए, वो समझ पाएगा उपदेश देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद पहले लिखते हैं नौ, पहले शब्द आता है नौ, तब जो हिरण्यकशिपु भगवान और भक्त के प्रति ईर्ष्या, एक ही अर्थ में समझ गए। लेकिन फिर भी इसमें भागवत के श्लोक देखेंगे इसका उल्टा, इसका उल्टा। भागवत वही तृतीय स्कंद में अभी चल रहा था, आप लोग सुन चुके हैं, थर्ड कांटो 24 चैप्टर नंबर 24 श्लोक नंबर 47 ये श्लोक है। इस श्लोक में ये जो श्लोक बताया गया, इच्छा द्वेष समुद्र है ना, दोनों मोहिने भारत, दूसरा अर्थ में आता है इच्छा द्वेष विहीन न सर्वत्र समचेतसा। जो भक्त होगा वो हर व्यक्ति समचेतना से देखेगा। लेकिन इधर तो हिरण्यकशिपु भक्त था क्या? अपना को गर्व करता था ना, अपना मन में घमंड था ना, वही घमंड का हिसाब से वही उन्होंने खुद बोलता था, सारा असुर परिवार को बोलते थे आप भगवान हिरण्यकशिपु की जय करो, अपना मन से घमंड, अपना मन से गर्व, अपना मन से सारा भक्त का प्रति और भगवान का प्रति ईर्षा। इसलिए यहां पे बताते हैं जिसे देश भाव कभी नहीं देखना, इच्छा देश समुद्र ना द्वंद्व मह ना भारत, इसलिए नकारात्मक शब्द इसमें आता है। तब फिर आता है भगवत भक्ति युक्त न प्राप्ता भगवत गति ही, जो ये ईर्ष्या नहीं करेगा तब इसका गति क्या होगा? भागवत की श्लोक अनुसार इच्छा द्वेष समुद्र न, इच्छा द्वेष विहीन न सर्वत्र समचेत सा, और हर जगह में पूजा पाएगा, और उसका गति क्या होगा? भगवत प्राप्ति, भगवत धाम में वास मिलेगा। ये ऑलरेडी आप लोग को सुन चुके हैं, लेकिन इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका अपोजिट में हर चीज भगवत गीता भागवत देखिए, प्रभुपाद हर शास्त्र को बहुत सारी श्लोक को कंबाइन दिए है, कंबाइन है। दो दो श्लोक आप पढ़ेंगे, एक ही श्लोक दूसरा श्लोक का साथ जड़ित है, एक ही श्लोक को समझने के लिए इसका पीछे वाला एक ही श्लोक और आगे वाला एक ही श्लोक को पढ़िए, तब जाके समझ पाएंगे। इसलिए मैं इसी भागवत की एक श्लोक को आपको बताया, इच्छा द्वेष विहीन न, ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष भाव नहीं रहेगा, गर्व नहीं रहेगा, घमंड नहीं रहेगा, विहीन न सर्वत्र समचेतसा, हर जगह में पूजा पाएगा। ये लिखा है समस्त देशों तथा इच्छा से रहित अकलमशता भक्ति करने विकास समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होगा। और ये सारी चीज हमारे पास रहेगा तो वहां हमें भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन तो हमारा अंदर बैठा है ना, ईर्ष्या हो जाता है ना, भक्त के अंदर भी ईर्ष्या हो जाता है। कोई भक्त थोड़ी से आगे बढ़ गया, लेकिन भगवान इस दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन भक्त का मन में कभी कभी ईर्ष्या आ जाता है, और ये ईर्ष्या ही हमारा पतन का कारण बन जाता है, हमारा पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें कैसा ईर्ष्या रहित रहेंगे। और ये जो भगवद गीता का श्लोक का जो तात्पर्य है, इसका अनुवाद में पढ़ रहा हूं, क्या लिखे इसलिए प्रभुपाद, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवती जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा घृणा के द्वंद रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर के तदाकर होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। जो मोहवश हो जाता है वो कृष्ण का प्रति ईर्ष्या करेगा ही। कृष्ण का प्रति कौन कौन ईर्ष्या किए हैं? पहल नंबर आएगा कौन? शिशुपाल। पहल नंबर में आएगा शिशुपाल। तब किंतु शुद्ध भक्त ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त से रहते हैं वे निपट मूर्ख होते हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में और एक श्लोक आया, हमारे श्रीमद भागवत को पढ़ने का पहले डीपली भगवद गीता को पढ़ना पड़ेगा, एक ही शब्द को अच्छा तरह से समझने के लिए, तब जाकर हमें भागवत समझ सकते हैं। ध्यान पूर्वक भगवद गीता में दिया गया है, चार व्यक्ति भगवान को मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं और भगवान के प्रति ईर्ष्या ही करते हैं, वो द्वंद्वात्मक में है, वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी। चार लोग कौन कौन है? नाम माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपदंत नराधम माया प्रभुत ज्ञानम आश्रम भावम आश्रिता। ये श्लोक है। ये चार प्रकार लोग भगवान को मानते नहीं, ये जन्मगत है और मानेंगे भी नहीं। अपना अंदर ही जो शत्रु बैठा है ना, छह शत्रु है, लास्ट शत्रु का नाम है मार्चर्यता। मार्चर्यता का शब्द का दूसरा अर्थ में समझा जाता है वो ईर्ष्या है। मार्चर्यता का अर्थ है ईर्ष्या, ईर्ष्या रखते हैं, कभी नहीं समझ पाएंगे ये चार प्रकार के लोग। इसलिए यहां पे जो बता गया आप लोग को, जो फोर्थ पॉइंट को बताया भगवान और भक्त का प्रति ईर्ष्या करते हैं, उनको कभी कृष्ण का बारे में ज्ञान नहीं देना चाहिए और कभी भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। कितना बार भी आप बोलते रहिए समझ में नहीं आएगा उनको, आएंगे कथा सुनेंगे उठकर चले जाए, आएंगे मंदिर दर्शन करेंगे चले जाएंगे, कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने भगवान तो दूर की बात है, भक्त का चरण में पहले अपराध करते हैं, वो कैसा कृष्ण को समझेंगे। भगवान हमेशा भक्त को अपना सिर में लेकर चलते हैं, भक्त कितना उच्च स्थान देते हैं, भगवान भक्त को कितना उच्च स्थान देते हैं। और भगवान को पहले समझने के लिए पहले भक्त का चरण का स्पर्श करना पड़ेगा, भक्त का चरण में आना पड़ेगा, तो भक्त ही समझा पाएगा भगवान को। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु आए धरती में। चैतन्य महाप्रभु आने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य था? भगवान का, कृष्ण का बारे में, राम का बारे में देखिए हमको कोई भी ज्ञान नहीं था। कृष्ण का बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं था, इसलिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप लेकर आए, भक्त अवतार बन कर आए। इसलिए संसार का लोग जब भी आते हैं मंदिर दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम नहीं करते और उनको देखते हुए तो बोलते हैं, पहले पूछते हैं ये कौन है। कृष्ण बलराम को देखते हैं तो बोलते हैं ये राधा कृष्ण है, राधा श्याम चंद्र को देखते हैं तो राधा ने ये नहीं बोलते, बोलते ये तो राधा श्याम सुंदर, उनका मुख से राधा श्याम सुंदर नहीं आता है, बोलते ये कृष्ण बलराम, ये कृष्ण बलराम, दोनों तो कृष्ण बलराम है, वो दरवाजा में कौन है? बोले वो दरवाजा में ये दो भाई राम लक्ष्मण होंगे और सीता जी को तो रावण तो ले लिया था, लोग ऐसा सोचते हैं। तब उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्ञान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त है, लेकिन भगवान भक्त का अवतार लेकर, भगवान है भक्त का अवतार लेकर आते हैं धरती में कलयुग में ये शिक्षा देने के लिए। तब इसलिए हम लोग जब भी संस्था में जोड़ते हैं पहले चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का पहला आप देखिए, पहले किसका मंत्र ले रहा है, क्यों ले रहे? पहले भक्त का नाम आ रहा है, पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, क्यों? ये पहले, पहले भक्त का पद रज को हम स्पर्श करेंगे तब भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए भगवान का भक्त का साथ कितना निविष्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, घनिष्ठ संपर्क है, कितना दृढ़ता है, भक्त का साथ है भगवान का। और जो लोग ईर्ष्या और घृणा और घमंड से नहीं समझ पाते और भगवान भक्त का पास है अपराध करते रहते हैं, इसको अपराध माना जाता है, उनको क्या समझाएंगे। इसलिए प्रभुपाद यहां पे मना किए, उनको शिक्षा नहीं देना, वो लोग कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। बारंबार ये जो श्लोक है 40, ये तो 39 लिखा गया, इसमें अनुवाद के तात्पर्य नहीं है। 40 नंबर श्लोक में लास्ट चैप्टर में, लास्ट पैराग्राफ में पूरा कम से कम जितना सेंटेंस है 10 बार लगभग बोले हैं, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते कृष्ण भक्ति को, और उनको शिक्षा नहीं देना चाहिए। जो नहीं समझ पाएंगे उनको कृष्ण के बारे में बोलते बोलते कि थक जाएंगे। कोई बहरा है उसका पास हमें बिना बजाएंगे कि बांसुरी बजाएंगे, क्या उसको सुना देगा? उसी प्रकार उनका ज्ञान नहीं है, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान और भक्त के प्रति जो ईर्ष्या करते उनका गति क्या होगा। तो वह थर्ड पॉइंट, गृहस्थ जीवन का प्रति अत्यधिक आसक्त, इसका ऊपर क्या लिखा है श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 17 अध्याय श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है, गृहस्थ जीवन का प्रति कितना आसक्त होते हैं वो भी कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें सोचते हैं गृहस्थ है, लेकिन इसका व्याख्या में आप समझिए। चलो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पुत्र दराप्त बंधुनाम संगम प्राप्त संगम अनुदेह वियत्यन्ते स्वप्न निद्रा अनुराग जथा। इसका अनुवाद में क्या लिखते हैं, बच्चों पत्नी संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है, शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संगियों के से उसी तरह विलग हो जाते हैं जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती है। इसका भावार्थ बहुत बड़ा है, लेकिन भावार्थ में कुछ पॉइंट लिखा है। लिखा है हम जो पारिवारिक में संबंध में आसक्त होते हैं, इसमें प्रभुपाद मेंशन करते हैं, कभी कभी हम सिनेमा हॉल में कोई व्यक्ति के साथ बैठ के सिनेमा देखे है, कितना टाइम देखे, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, मान लीजिए 24 घंटा भी आप देख लिया, 24 घंटा का बाद फिर दूरता हो गया ना, आप उनसे दूर हो गए। दूसरा अर्थ में बताते हैं, कभी कभी होटल में किसी को मिलते हैं, कभी कभी होटल में भोजनालय में मिलते हैं, कितना समय भोजन जब करते कितना समय करेंगे, 10 मिनट? 10 मिनट तो नहीं, हम तो भगवान को भोग लगाते 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन हम जब खाते हैं लगभग 1 घंटा, क्यों बातचीत चलता है, कोई कृष्ण बात नहीं है विषय बात, तो बातचीत चलेगा डाइनिंग टेबल का ऊपर बैठ के सारी चलेगा। तब उसी समय समझिए 1 घंटा 1 घंटा का बाद फिर हम दूर हो जाएंगे। कभी कभी पांथशाला में मिलते हैं तब भी बातचीत चलेगा, वही 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, फिर भी हम दूर हो जाएंगे। कभी कभी ट्रेन में जाते हैं, सफर कर रहा है, फिर भी उसका साथ हम जा रहे हैं, 36 घंटा ट्रेन पहुंचेगा, फिर भी 36 घंटा इसका साथ, 36 घंटा का बाद फिर दूर हो जाएंगे। उसी प्रकार चलो प्रभुपाद इसको मेंशन करते हैं, पांथ संगम में, होटल और भोजनालय में, पर्यटन के स्थल में, पारंपरिक सांस्कृतिक स्थान में, और कभी कभी पानी कुआं का पास कभी मिलन हुआ तब भी पानी लेने का बाद फिर हम दोनों अलग हो गए। इस समय हम तमाम संबंधियों से, मित्रों तथा हितेशियों से संबंध से, किंतु अपने भौतिक शरीर के परिवर्तन होते ही हम इसी संगियों से इसी तरह पृथक हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया, इसको दूसरा अर्थ में आप समझिए। अभी मनुष्य शरीर में ये ज्ञान और बुद्धि दिए भगवान ने, हम समझते हैं ये ज्ञान बुद्धि भगवान जब दिए हैं, हमें समझ रहे हैं ये मेरा पिताश्री है, ये मेरा माताश्री है, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है। इसका पहले जन्म में और आगे जन्म में क्या होगा, ये सारा शरीर परिवर्तन होने के बाद पिता माता भी परिवर्तन हो जाएंगे। पिता माता भी परिवर्तन है, वही पिता माता रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, लेकिन अभी हम ये शारीरिक संबंध से हम बोल रहे हैं बहुत दृढ़ता के साथ, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा माता है, ये मेरा सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा ब्रदर एंड लॉ है, ये सब शारीरिक संबंध से बोल रहे हैं क्षणिक। लेकिन इसी के प्रति आसक्त नहीं, इसके प्रति जो आसक्त होता है इसको भी कृष्ण भक्ति समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये शारीरिक संबंध में है। इसलिए असल प्रभुपाद बोलते हैं गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त, थोड़ी सी आसक्त फिर बोलते हैं, जैसे काल वैष्णव प्रभु लेक्चर में बोल रहे थे ना, मोह फिर महामोह, इसी प्रकार आसक्त फिर अत्यधिक आसक्त, जो अत्यधिक आसक्त है वो कृष्ण भक्ति को कभी नहीं समझ पाएगा, वो नहीं समझ रहा है, वो सारा शरीर के संबंध में बस सुबह से शाम तक अपना काम चलाते रहता है, कभी नहीं कृष्ण भक्ति को समझ पाएगा। जिसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ये भागवत में मेंशन करते हैं, स्वप्न देखते हैं, बेड का पर हम रात को लेट गए 9-10 बजे, तब फिर हम दिन भर का जो कार्यक्रम किया है रात में हमारा स्वप्न आया, वो हुआ ये हुआ सब देखे है। कभी कभी व्यक्ति बेड का ऊपर सोते हुए कभी राजा बन जाता है, कभी कभी फ्लाइट में उड़ रहा है, कभी कभी उसको सांप की चूहा काट दिया वो रो रहा है, जब रोना शुरू होता है और जब नींद टूट जाता है फिर देखता है क्या हो गया, जब स्वप्न टूट जाता है तो वो समझ जाता है, अरे कौन सा, मैं तो अभी उड़ाजहाज में उड़ रहा था कहां गया, कि मैं इतना बड़ा धनीशाली व्यक्ति बन गया था कहां गया, ये सारा स्वप्न है, व्यक्ति इसी चीज को नहीं समझ रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद समझ रहा है जिस तरह जग जाने पर हम स्वप्न की काल्पनिक वस्तुओं को तुरंत भी तुरंत विलोप हो जाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर संबंध के प्रति आसक्त नहीं होना। जब तक हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग नहीं करते हैं तब तक हम भक्ति के दिव्य स्तर पर नहीं पहुंच सकते और हम नित्य सुख को रसवादन नहीं कर सकते। चलो प्रभुपाद एक ही सेंटेंस में लिख दिए, इसका लास्ट कंक्लूजन में लिखे है, कंक्लूजन में ये लिखे है, जब तक भौतिक इंद्रिय तृप्ति को परित्याग नहीं करेंगे तब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं समझ पाएंगे। कब हम छोड़ेंगे, कल वैष्णव प्रभु बोल रहे थे ना, बजाते बजाते मृदंग फाड़ गया लेकिन हृदय नहीं पिघल रहा है, तो कब पिघलेगा, जब कब पिघलेगा, हम जब शुद्ध भक्ति करेंगे और शुद्ध भक्त का चरणार्थ होके उनका वचन को पालन करेंगे तब जाके। सिर्फ हमें ड्रेस पहन के माला ले लिया कि स्कन में जोड़ गए, उसका भावार्थ के इसलिए प्रभुपाद जो भावार्थ लिखे है उसको हम पढ़ेंगे बाद में, हर चीज लिख दी है, कोई कोई मान सम्मान के लिए स्कन में आ जाते हैं, कोई दान देने के लिए दान देंगे और मेरा नाम लिखो वो तो बोलेंगे, उनका भी होता है, ये लोग कभी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। कौन सा व्यक्ति समझ पाएगा, जो इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करता है, शरीर संबंध को त्याग करता है, शरीर नहीं है हमें जीवात्मा है, पहले डीपली जाना पड़ेगा, शरीर नहीं है, हम सोचते ही हमारा पिताश्री है, क्या पिताश्री है, प्रभुपाद तो बहुत सारी जगह में मेंशन किया कि कुत्ता का, जब हमारा कुत्ता का शरीर था उसी समय में क्या हमारा पिता माता नहीं थे, क्या बिल्ली का शरीर में था तब पिता माता नहीं थे, कि गाय का शरीर में थे तब पिता माता नहीं थे, कोई भी पशु जोनि में थे तब क्या पिता माता नहीं थे, तब इसी मनुष्य शरीर में आ गए तो हमारा पिता माता हो गए, ये शरीर में भगवान ज्ञान और बुद्धि दिए कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण को शरीर भी समझने के लिए, भजन भी है कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही सब कुछ, और 5 मिनट रहा। और सेकंड पॉइंट क्या है, कौन बोलेगा सेकंड पॉइंट? हाँ जी, बहुत अच्छा से सुन रहा है। दंभ भगवद गीता का श्लोक में आता है, बोलिए कौन सा श्लोक में आता है? वेरी गुड। 16 चैप्टर का, चैप्टर का नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है? भगवद गीता का 16 अध्याय का शीर्षक का नाम क्या है? दैव असुर विभाग जोग। पहला आया देवता, इसका बाद असुर। चलो प्रभुपाद ये शीर्षक दैवी असुर विभाग जोग को लिखे। इसमें 24 श्लोक है और इसी अध्याय को कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा ध्यान पूर्वक पूरा समझ पाएगा भक्त का लक्षण क्या है, अभक्त का लक्षण क्या है, और भक्त के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, अभक्त के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। भक्त के अंदर जो गुण होता है वो देवता के पास होता है, देवता का गुण शरीर भक्त लोग के अंदर प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, नहीं तो भक्त नहीं बन सकता है, उसका अंदर ये गुण होता है। जिसी प्रकार हम स्कन में आ रहे हैं कि स्कन में हम जुड़े हैं कि स्कन में हमें रह रहा है, हमारा हो सकता है 99% हमें गलत कर रहा है कि 99% हमें दोष देख रहा है कि हमारा अंदर दोष है, दोष की भरा है, लेकिन कोई ना कोई एक अच्छा गुण होगा जो कि हमें कृष्ण का सेवा में जुड़े है। एक ही गुण भी और एक ही गुण कृष्ण का सेवा में हमें जुड़े हैं और कृष्ण इसको ग्रहण करते हैं। हो सकता है 99% हमारा अंदर दोष है लेकिन एक ही अच्छा गुण होगा। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जो भगवद गीता का 16 अध्याय 1, 2, 3 नंबर श्लोक, 16 चैप्टर का 1, 2, 3 नंबर श्लोक जो है, ये तीन श्लोक के अंदर देवता का अंदर जितना सारे गुण है, भक्त का अंदर ये जितना सारे गुण है उसको देते हैं। 26 गुण भक्त का अंदर दिखाई देता है, ये 26 गुण भक्त का अंदर होता है। और दूसरा श्लोक जो आया है, 4 नंबर श्लोक आया, क्या आया? दंभ दर्प अभिमानस क्रोधम पारुष्यम एवच। 6 गुण, ये 6 गुण असुर जो कि कृष्ण भक्त को, भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, उनका अंदर ये 6 गुण आता है, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बताते हैं ये असुरी स्वभाव है, असुरी स्वभाव है, और असुर के परिवार में ये जन्म होता है, उनका अंदर ये सारे गुण आएगा। ये समझिए, एक आएगा दंभ, दूसरा आएगा दर्प, तीसरा आएगा अभिमान, चौथा आएगा क्रोध, 5 आएगा कठोरता, और 6 आएगा क्या? अज्ञान, ज्ञान नहीं होगा। इसमें श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन किया गया, पहले सेंटेंस में बोलते हैं श्रील प्रभुपाद ये नरक का राजमार्ग खोल देता है। ये 6 गुण जिसका अंदर आ जाता है ना, नरक का मार्ग खोल देता है, राजमार्ग, जैसे नेशनल हाईवे खोल देता है, नरक का नेशनल हाईवे खोल देता है 6 गुण आने के बाद। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही उनके सिद्धांत को पालन न करते हो, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और संतान सम्मान दिलाएं, भले ही वह सम्मान की योग्य नहीं हो, फिर भी जिसी प्रकार हिरण्यकशिपु का, जिसी प्रकार रावण का, हाँ जिसी प्रकार शिशुपाल दंतक्र, ये लोग छोटे छोटी बात पर क्रुद्ध हो जाते हैं और नम्रता नहीं है, बोलते ही तो कोई प्रमाण नहीं है, जो कुछ बोलेंगे अपना मन विचार करके बोलेंगे, कोई प्रमाण नहीं है। वे आश्रय गुण तब से प्राप्त कर लेते हैं जब ये माताओं का गर्भ में रहते हैं। आसुरी स्वभाव आने के बाद हम सोच रहे हैं आ जाता है, कभी नहीं, ये माता का गर्भ से ही आ जाता है, प्रभुपाद मेंशन करते हैं। और जो जब वो बढ़ता रहता है, और आसुरी स्वभाव क्या होता है? बढ़ते जाता है। और लास्ट आया है ईर्ष्या, इसका 2 मिनट है अभी। ईर्ष्या, ईर्ष्या का ऊपर होता है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो कथोपदेश, इसमें मैं थोड़ा सा लिखा है। और कौन किसका प्रति ईर्ष्या किया था, इसमें आता है गुरु का ऊपर गुरुगिरी। लोग सोचते अपना अंदर कुछ हम पढ़े लिखे हो गए, कुछ शास्त्र हमारा अंदर ज्ञान आ गया, तब हमें गुरु का ऊपर गुरुगिरी दिखाते हैं, इस प्रकार लगते हैं। कोई कोई भगवान श्री कृष्ण और रामचंद्र और चैतन्य महाप्रभु का ऊपर भी दोषारोप किए थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु का ऊपर दोषारोप किए, रामचंद्र जी का ऊपर दोषारोप किए, श्री कृष्ण का ऊपर भी। ये लोग इतना ईर्ष्याल होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का ऊपर ईर्ष्या किया था, कौन किया था? रामचंद्रपुरी बोला सन्यासी हो, आपका कमरा से चिंटी निकल रहा है, क्या सन्यासी हो, मीठा खा रहा है, उनका ऊपर ईर्ष्या हो गया। रामचंद्रपुरी ने ईर्ष्या किया स्वयं चैतन्य महाप्रभु का ऊपर और राम जी का ऊपर। श्री रामचंद्र जी पत्नी के लिए रो रहा है, सीते 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 बोल के रो रहे, लोग इसको भी समालोचना करते हैं। रामचंद्र जी स्वयं भगवान है और कौन सा लीला करने के लिए मर्यादा पुरुष का रूप में इस धरती में आए हैं और कौन सा लीला कर रहे हैं वो भी नहीं देख पा रहे। ये भी वर्णन किया गया है, पत्नी मतलब पतन, पत्नी मतलब क्या है, पतन, ऑलरेडी उनका पतन हो चुका है, और पति मतलब उसको उद्धार करेगा। तब रामचंद्र जी ने पत्नी धारण किए सीता जी को, और उनका उद्धार करना उनका कर्तव्य है। तब सीता जी को जब रावण चोरी कर ले रहा है, तब उनका उद्धार करना कर्तव्य है कि नहीं, पति का कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी उनका सरेंडर में है, पति का कर्तव्य है उसको उद्धार करना है। और संसार का लोग क्या मचाते हैं, इसी प्रकार ईर्ष्या भाव से भगवान राम को इसी प्रकार देखते हैं। और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का बारे में आता है, जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, पांडव पक्ष ले रहे थे, क्यों पांडव पक्ष ले रहे, दोनों तो वंशधर है, क्यों पांडव पक्ष ले रहे, कृष्ण को ज्ञान होना चाहिए उनका पक्ष क्यों ले रहा है, क्यों? दुर्योधन तो जब भगवान कृष्ण लेटे थे तो दुर्योधन को पहले पूछा गया, तुम कौन किसको लेना चाहते हैं, मेरा को चाहते हैं ना सन्यगुण को चाहते हो, किसको चाहते हो? दुर्योधन और भगवान स्वयं संकल्प ले चुके थे, मैं कभी अस्त्र उठाऊंगा नहीं, अस्त्र धारण नहीं करूंगा युद्ध क्षेत्र में, भगवान ने संकल्प ले चुके हैं। तब दुर्योधन ने बोला भगवान तो ऐसा है, तब क्या करूं, तो फिर भगवान को चुना नहीं, किसको चुना, बोला हजार हजार सन्यागण तो धनुषवान उठाएंगे, तो उनको चुन लिया और उनका चुनने के बाद क्या गति हुआ। जब जहां पे कृष्ण है कृष्ण को चुनना चाहिए, वो नहीं समझ पाया, तब अर्जुन बोले ठीक है मेरा साइड में कृष्ण आ जाए, तो अर्जुन तो पांडव वंशधर ना, तो अर्जुन के साइड में कृष्ण आया था, कृष्ण युद्ध क्षेत्र में कभी युद्ध नहीं किए लेकिन सारा युद्ध हो गया, युद्ध में कौन जीत लिया, पांडव वंशधर जीत लिए, क्यों जीते, हर चीज का प्रश्न होता है, हर चीज का साइंटिफिक वे भी होता है, हर चीज को समझने का तरीका भी होता है, क्यों जीते, क्यों कृष्ण थे, और कृष्ण जहां पे है वो जीतेगा ही जीतेगा। तो हम जब कृष्ण भजन करेंगे तो हम धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, कितना लोग जाने के लिए चाहते हैं, जब हम कृष्ण भजन करेंगे लेकिन दृढ़ता का साथ, ऐसा नहीं हम तो हमको मिल गया कुछ हम ऐसा ही करते रहेंगे बस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। और गुरु और शिष्य का ऊपर क्या देते हैं, गुरु का अर्थ क्या होता है, भारी, जो शासन करता है जो शासन कर सकता है वो होता है गुरु, और शिष्य क्या है? शासन का योग्य हो वो शिष्य है, गुरु का अधीन हो वो शिष्य है। लेकिन अभी हम क्या है, गुरु से जिस दिन दीक्षा ले लिया ना उसी दिन हम शिष्य तो बन गए, तो वह ठीक है, गुरु से हमें अभी ज्यादा से ज्यादा अभी दूर चले जाते हैं। गुरु के साथ मिलना चाहिए, हमको दीक्षा गुरु नहीं मिल पाते हैं तब शिक्षा गुरु किसी को अभी चुनना चाहिए शिक्षा गुरु का हिसाब में, और उनसे आप शिक्षा लेते रहना चाहिए। वो शासन का जो शिष्य है वो शासन का योग्य होना चाहिए, तब शिष्य। गुरु और शिष्य का अंदर पार्थक्य आप समझिए, हमें शिष्य है अपना को धिक्कार मानिए, हम शिष्य नहीं है। कभी कोई हमारा उच्च स्तर के भक्त, कोई उत्तम भक्त कुछ बोलता है हमें सहन कर नहीं पाते हैं, हमारे मन में इमीडिएटली क्या जाता है, क्या जाता है, क्रोध इमीडिएटली आ जाता है, क्यों बोला है, हमें शिष्य है अपना को धिक्कार मानना चाहिए। कब शिष्य हो पाएंगे? हर दिन चैतन्य महाप्रभु का चरण में, श्रील प्रभुपद का चरण में, नित्यानंद प्रभु का चरण में रोना चाहिए। कृष्ण का पास रोना दूर की बात है, पहले श्रील प्रभुपाद, इसका बाद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इसका बाद चैतन्य महाप्रभु, उनका चरण में रोना चाहिए। कब मैं शिष्य होंगे, कब मेरा को गुरु का कृपा मिलेगा, कब कृष्ण का कृपा मिलेगा? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो हमें समझ पाएंगे। जब उनका कृपा होगा तब हर चीज को हमें समझ सकते हैं, नहीं तो उसी अज्ञान और विद्या का अंदर हम चलाते रहेंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। और ये चार प्रकार के व्यक्ति को कृष्ण भक्ति को समझ में नहीं आता है, इसलिए लास्ट जो चैप्टर है आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भौतिकवादी व्यक्ति किसी नाम जस तथा लोभ के पीछे लगे रहते हैं, अतः यदि कोई उन कारणों से कृष्ण भक्ति को ग्रहण करता है तो वह उसी दर्शन को कभी नहीं समझ सकता है। नाम जस के लिए आएगा वो कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएगा। एक देखिए, पहले प्रभुपाद बोले हैं नहीं समझ सकता, एक बार आया, दूसरा बार देखिए। ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं, विशेषकर कलयुग में वे किसी सांस्कृतिक संस्था में केवल नाम कमाने के लिए प्रवेश करते, ऐसे लोग कृष्ण चेतना को दर्शन को कभी नहीं समझ पाएंगे। दो बार आया, तीसरा देखिए। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची न भी हो किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हो, वो भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएगा। कितना आया? तीन, गिनती रहिए। ऊपर ऐसे लोग भले ही लालची न लगे किंतु यदि अपनी पत्नी बच्चों परिवार उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो, यदि ऐसा व्यक्ति हो उपयुक्त तो दोषों से कलमस्त ग्रस्त हो, वो भी कृष्ण भक्ति को कितना बार हुआ नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। अब समझिए, इसलिए प्रभुपाद किसको किसको बोल रहे हैं, ये व्यक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएंगे।